Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about 5 o'clock, when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened...
American Broadcasting Corporation ke Kim McKay ne jab ye khabar puri duniya ko di, to har jagah ek tarah ki sansani phail gayi. 6 घंटे पहले ही ब्लैक सितंबर के प्रमुख 9 फिलिस्तीनी छापामारों को म्यूनिक के ही एक रेस्तरां में खाने पर ले गए। वहीं उन्हें पहली बार बताया गया कि अगले कुछ घंटों में उन्हें किस काम को अंजाम देना है। उन सभी से उनके पासपोर्ट और दूसरी सभी चीजें ले ली गईं ताकि इस बात का कोई सुराग न रहे कि वो थे कौन। इसके बाद वो सब ओलंपिक गांव की तरफ बढ़ गए। अफ्रीका के किसी देश में अंडरग्राउंड जिंदगी बसर कर रहे ब्लैक सितंबर के पूर्व फिदायीन जमाल अल काशी याद करते हैं।
जब हम चार दीवारी के तारों को पार कर रहे थे, हमारा सामना कुछ अमरीकी एथलीटों से हुआ। वो रात में मजे लेकर वापस खेलगांव लौट रहे थे। मुझे याद है उन सब ने शराब पी रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि हमने एक दूसरे को तारों की बाढ़ पार करने में मदद की। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनमें से एक को पकड़कर तारों के उस पार कर दिया। हमने एक दूसरे को शुक्रिया और बाय भी कहा।
इन चरमपंथियों को तड़के सुबह 4 बजे ओलंपिक गांव की 6 फीट ऊंची तार की बाढ़ फलांगते देखा गया। ठीक 4:25 पर 31 कोनोली स्ट्रॉस के अपार्टमेंट 1 को खोलने के लिए मास्टर की अंदर घुसाई। अपार्टमेंट के अंदर सभी इजरायली गहरी नींद में सोए हुए थे। सिर्फ कुश्ती के रेफरी योसेफ गटफ्रायन थोड़े उन्हीं दे थे। मशहूर पत्रकार जॉर्ज जोनास अपनी किताब वेंजियंस ए ट्रू स्टोरी ऑफ एन इसराइली काउंटर टेररिस्ट टीम में लिखते हैं।
योसेफ को थोड़ी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को खुरच रहा हो। मामूली रोशनी में भी नींद से भरी आंखों के बावजूद उन्हें एक फिदायीन की आंख और उसकी कैलिशनिकोव की नाल दिखाई दे गई। एक सेकंड में उनकी नींद काफूर हो गई और 6 फीट 3 इंच ऊंचे 140 किलो वजनी भीमकाय योसेफ ने चिल्लाकर हिब्रू में कहा, चेवरेतिस्तात्रु, यानी बचो लड़कों। उन्होंने अपने भालू जैसे शरीर का पूरा वजन दरवाजे के पीछे लगा दिया। चरमपंथियों ने दरवाजे की चाबी जमीन पर गिरा दी और सातों लोग एक साथ दरवाजे को धक्का देने लगे।
योसेफ ने पूरे 10 सेकंड तक दरवाजा नहीं खुलने दिया। तुविया सोकोलोस्की के लिए खिड़की तोड़कर निकल भागने के लिए इतना समय काफी था। उधर इसराइलियों के ठीक सामने रह रहे भारतीय दल के सदस्य एडवर्ड सिक्वीरा की भी उसी समय आंख खुल गई।
श्रीराम और मैं एक रूम में था, ग्राउंड फ्लोर में, और अबाउट 4:25 में क्या हो गया, वो बहुत गड़बड़ हो गया। ऑपोजिट बिल्डिंग में इंडिया आई था एंड इसराइल आई था, सामने था वो लोग। मैं तो सो गया था बिकॉज नेक्स्ट डे हम इवेंट करने वाला था 5000। मैं बोला ये क्या है, मैं पहला समझा पाकिस्तान अटैक करता क्या आप उनको। मैं श्रीराम को बोला उठो देखना क्या आदमी लोग पहले माला से जंप करता है इधर मारता है। एंड सब ट्रैक सूट में था, ब्लैक बैग था एंड मास्क था। वो लोग सेकेंड फ्लोर में था और मैं क्या देखा वो लोग को एक एक दो दो आदमी को रेसलर को इसराइल वालों को एक रूम में डाला था।
ब्लैक सितंबर के चरमपंथियों को इसराइली एथलीटों को काबू करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पहले उन्होंने योसेफ गटफ्रायन को मारा और फिर मोशे वैनबर्ग को, क्योंकि उन्होंने फल काटने के चाकू से उनके नेता पर हमला कर दिया था। तभी अपार्टमेंट नंबर 2 में रह रहे एक और इसराइली शाउल लडानी को उनके साथी ने जगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वो अपने पायजामे में ही निकलकर बाहर आ गए।
The terrorists from the second floor from apartment number 1 had a clear view from the window.
अपार्टमेंट नंबर 1 की दूसरी मंजिल की खिड़की से जैसे ही एक फिदायीन ने हमें देखा वो बाहर निकल आया। मैं बिना दौड़े सधे सामान्य कदमों से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे शायद ये गलतफहमी हो गई कि मैं इसराइली नहीं हूँ। मैं शायद बेवकूफी कर रहा था, लेकिन हम सही सलामत अपार्टमेंट से बाहर निकल आए।
उसी समय भारतीय हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे।
हम उठे अपनी प्रैक्टिस के लिए, اور پوری ٹیم تیار ہو کے نکلی ہے اپنے اپنے کمروں سے باہر اور اکٹھے ہو کے ہم نکلے ہیں. اور میں جب نیچے آیا ہوں اور دروازہ کھولا ہے تو سامنے میں نے ایک مجمع ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی جس میں پولیس والے بھی شامل تھے وہاں کے لوکل پولیس, اور ان کے کندھوں پہ اور ہاتھوں میں بندوقیں. تو بڑا دیکھ کے تعجب سا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی پشوپش میں میری نظر جو ہے وہ سامنے کے فلیٹس کے اوپر, ہمارے سامنے قریب 20 گز کا ایک میدان تھا, اس میدان کے بعد دوسرے فلیٹ بنے تھے, ان فلیٹوں میں اسرائیلی ٹیم رہ رہی تھی. تو اس میں میری نظر گئی تو اوپر کے دوسرے یا تیسرے فلور کے اوپر نقاب پوش ایک انسان, اور وہ بندوق ہاتھ میں لیے وہ نیچے ان کی بات چیت کسی سے ہو رہی ہے. تو اس وقت تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا یہ.
دس از بلڈنگ نمبر 31 اینڈ وی آر موونگ ان ناؤ آن دی ونڈوز بیہائنڈ وچ ایٹ دس مومنٹ
بلیک سپٹمبر کے چرم پنتھیوں نے ان 9 اسرائیلیوں کو چھوڑنے کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں بند اپنے 234 ساتھیوں کو چھوڑوانے کی مانگ رکھی. لیکن اسرائیل کی پردھان منتری گولڈا مائیر نے اپنے پور گھوشت نیتی کے انوسار ان کی اس مانگ کو ماننے سے انکار کر دیا.
اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی اسرائیلی یہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ اس کی زندگی سرکشت ہے. اس سے برا کوئی بلیک میل نہیں ہو سکتا.
کوئی سمجھوتا ہوتے نہ دیکھ جرمن پرشاسن ان چرمپنتھیوں کو بندھکوں کے ساتھ قاہرہ جانے کے لیے اپنا 727 ویمان دینے کے لیے سہمت ہو گیا. انہیں ہوائی اڈے لے جانے کے لیے کھیل گاؤں میں ہی 2 ہیلی کاپٹروں میں بیٹھایا گیا. اس سمے اسرائیلی تیراکی ٹیم کی سدسیہ شلومت نیئر اپنی کھڑکی سے یہ درشیہ دیکھ رہی تھیں.
The last moment that we saw our friends, 2 helicopters were landing just under our building.
ہماری عمارت کی ٹھیک بغل میں 2 ہیلی کاپٹرز نے لینڈ کیا. ہم نے اپنے ہر ایک ساتھی کو دیکھا. ہم ان کی چال سے ان کو پہچان سکتے تھے. ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ سب بھی ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے. ان میں سے 4 لوگوں کو ایک ہیلی کاپٹر پر بٹھایا گیا اور 5 کو دوسرے ہیلی کاپٹر میں. سارے چرمپنتھی بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے. ہم نے من ہی من دعا مانگی کہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو.
ٹھیک رات کے 10:20 پر ان 2 ہیلی کاپٹرز نے اڑان بھری.
Now proceed out over the Olympic site, out over the main stadium where half the lights are on. The second helicopter is now following it and moving out around this.
Israeli hostages and the Arab commanders who have held them hostage for this entire day have now left.
اس سے ٹھیک پہلے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے پرمکھ زوی زامیر بھی فرسٹنفیلڈبرگ ہوائی اڈے پہنچ گئے. زامیر یاد کرتے ہیں.
They weren't capable. I mean, I can tell you that I doubt whether the snipers were...
جب میں وہاں پہنچا تو وہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. مجھے سہسا اس بات پر یقین ہی نہیں ہوا. اگر ہم وہاں کے انچارج ہوتے تو ہم نے اس علاقے کو فلڈ لائٹ سے بھر دیا ہوتا. مجھے لگا کہ وہاں ہر جگہ چھائے کے اندر سنائپرز بیٹھے ہوں گے, لیکن وہاں ان 5 سنائپرز کے علاوہ نشانہ لینے کے لیے کوئی نہیں تھا. جرمن بالکل اناڑیوں کی طرح کام کر رہے تھے.
جیسے ہی ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے لگے چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں. ون ڈے ان سپٹمبر کے لیکھک سائمن ریو بتاتے ہیں.
Literally, as these helicopters were circling the apron ready to land, 17 German police officers who were manning...
جب یہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کے لیے اوپر چکر لگا رہے تھے, قاہرہ جانے کے لیے تیار 727 بوئنگ ویمان میں تعینات 17 جرمن سینک ویمان سے باہر نکل آئے. انہیں لگا کہ وہاں ان کے لیے بہت خطرہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہتھیاروں سے لیس 8 فلسطینی چرمپنتھیوں سے نپٹنے کے لیے صرف 5 جرمن سنائپر بچے رہ گئے. وہ بس نام کے ہی سنائپر تھے. نہ تو ان کے پاس اس طرح کے آپریشن کے لیے کوئی پرشکشن تھا, نہ ہی اچت ہتھیار اور بلٹ پروف جیکٹس. وہ پورے ہوائی اڈے پر چھترے ہوئے تھے. ان میں سے کم 2 لوگ دوسرے سنائپرز کی فائرنگ رینج کی سیدھ میں تھے. بالکل نوسکھیوں کی طرح اس حملے کی یوجنا بنائی گئی تھی.
جرمن نشانے بازوں کا نشانہ چوک گیا. ایک چرمپنتھی کے پیر میں گولی لگی. وہ لنگڑاتا ہوا ہیلی کاپٹر تک پہنچا اور اس کے نیچے چھپ گیا. جرمن اس طرح فائرنگ کر رہے تھے جیسے وہ کبوتروں پر نشانہ لگا رہے ہوں. دوسری طرف چرمپنتھی بہت ادھک موٹیویٹڈ تھے. وہ لگاتار فائرنگ کر رہے تھے. इस बीच एक जर्मन अफसर के सिर में गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। साइमन रीव कहते हैं।
And then finally some German armored cars arrived on the scene. They'd been called in by the German officials in the hope that they would be able to get closer to the helicopter.
फायरिंग शुरू होने के काफी देर बाद हेलीकॉप्टर्स की तरफ बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं। इन गाड़ियों में सवार जर्मन सैनिकों ने फलस्तीनी चरमपंथी समझकर अपने ही एक साथी पर गोली चला दी। उस समय चरमपंथियों को लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उनके पास उन बंधकों को खत्म करने का आखिरी मौका बचा है। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हेलीकॉप्टर्स के पीछे बैठे हुए इसराइली बंधकों की तरफ घुमा दी। एक दूसरे चरमपंथी ने दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे उसमें आग लग गई। उसी समय सारे 9 इसराइली बंधकों की मौत हो गई। उस समय वहां सैकड़ों जर्मन सुरक्षाकर्मी मौजूद थे लेकिन वो एक भी इसराइली बंधक को बचा नहीं सके।
इस बीच पता नहीं कहां से ये खबर फैल गई कि ऑपरेशन सफल रहा है और सभी बंधकों को बचा लिया गया है। सबसे पहले फ्लैश रॉयटर्स पर आया। जैसे ही गोल्डा मेयर को इसके बारे में पता चला, उन्होंने खुशी के मारे शैंपेन की बोतल खोल दी।
On the radio, it was transmitted almost the whole world that all the hostages are safe.
रेडियो पर पूरी दुनिया को खबर सुनाई गई कि सारे बंधक सुरक्षित हैं। हम सब लोगों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया, फिर हम लोग सोने चले गए। करीब 5:30-6 बजे किसी ने मुझे जगाकर कहा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है।
उसी समय हवाई अड्डे से ही सारा दृश्य देख रहे मोसाद प्रमुख जमीर ने इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को फोन लगाया। जब उन्होंने गोल्डा को यह खबर दी तो उनके हाथ से फोन का रिसीवर छूट गया। कुछ ही सेकेंडों बाद टेलीविजन पर जिम मैके की आवाज गूंजी।
They now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone.
इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद म्यूनिक ओलंपिक खेलों को रोका नहीं गया। जर्मन सरकार के असफल बचाव अभियान पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। पकड़े गए 3 फलस्तीनी चरमपंथियों को सिर्फ 3 हफ्ते बाद उस समय रिहा कर दिया गया जब ब्लैक सितंबर ने लुफ्थांसा का एक और विमान हाईजैक कर लिया। इनमें से 2 चरमपंथियों को बाद में इसराइली सीक्रेट एजेंट्स ने मार दिया। एक चरमपंथी अभी भी जीवित है और अफ्रीका के किसी देश में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।